ओम शांति। हम सब के बीच में राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी का परिचय कुछ इस प्रकार से है। आप विगत 36 वर्षों से प्यारे बाबा के राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में पिछले 26 वर्षों से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप निदेशक हैं कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के आरएमएम ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू। आप 3D हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड और स्वस्थ शरीर आप 26 वर्ष से भी अधिक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 3D हेल्थ केयर के प्रोग्राम के माध्यम से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मान प्राप्त किया है। आप 2011 में भारत के तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए स्वास्थ्य की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित हैं। आपने भारत वर्ष के अलावा भारत के बाहर भी अनेकों स्थान पर राजयोग के अनुभवों को और 3D हेल्थ केयर के कार्यक्रमों को आपने साझा किया है। आप ज्ञान योग के व्यवहारिक पक्ष को विश्वास रखते हैं। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे कुशल प्रखर वक्ता राजयोगी जीवन वाले सदा अपनी स्थिति को लाइट और माइट स्वरूप में रखते हैं। उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वो आज हम सब ज्ञान योग तपस्या भक्ति में आए हुए भाई बहनों के समक्ष ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण कैसे बने, इस विषय पर अपने अनुभव युक्त सारगर्भित विचारों को हमें प्रदान करें भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों की सदा एक ही लगन है, एक ही आशय। कौन सी लगन है, कौन सी आशय है? कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर वन बने हैं ना, शिव बाबा को उन्होंने एक्यूरेटली ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल था क्या? हमारे सामने तो ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। और जितना जितना लेट आए हैं उनके सामने बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। दादियां हमारी एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है ही, कि तो ब्रह्मा बाबा के अलावा दादियां हमारी, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी निर्मल शांता जी, दादी शांतामणि जी, दादी रत्नमयी दादी भी हमारे सामने हैं, दादी मनोहर आदि दादी, कितनी दादियां थी, दादी गुलजार जी, बाबा का माध्यम मनी, बाप दादा की पदरामणि का माध्यम मनी 48 साल तक लगभग। तो बाबा हमारे सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सैंपल्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। और ब्रह्मा हम बच्चों ने बाबा से कितना पालना लिया, कितनी स्नेह हमें मिला, कितना स्नेह मिला है बाप दादा से, कितनी शक्तिशाली पालना हमने ली है और कितना हमें अविनाशी खजाने बाबा ने लिए। अब उनका रिटर्न करने का समय है क्या नहीं है? समय प्रमाण अभी हमको वापस घर जाना भी है। तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण किसके समान? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा में तो शिव बाबा तो चला जाएगा वापस परमधाम, और हमें वायदा क्या है हमारा बाबा के साथ, क्या वैसे साथ हैं, साथ हैं अभी नहीं है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे, पर साथ कौन रहता है? जो गुणों में समीप और शक्तियों में समान बनता है, जो ब्रह्मा बाबा के गुणों में समीप बनता है और शक्तियों में समान बनता है, वो ही ब्रह्मा बाबा के समीप आ सकता है ना, स्टेज में, राइट। तो अगर हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, मैं देख रहा था कि हम कैसे, मतलब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विस्तार में हम जा सकते हैं, है ना। अगर हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है ना, और हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया और हमें क्या करना है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा नंबर वन बना, अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर ले, इसलिए कहते भी ना, अभी बाबा की एक मूली थी पीछे, तो बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो मस्तक में शिव बाबा को समा दो। मस्तक में किसको समा दो? शिव बाबा को समा दो। मस्तक में माना आत्मा, निराकारी आत्मा, निराकार बाप से कंबाइंड हो जाए, और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा दो। अर्थात हम जो कुछ भी करें, ब्रह्मा बाबा ने जो किया, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, जो भी ब्रह्मा बाबा ने किया, अपने आप को उससे कंपेयर कर ले, कुछ भी करने से पहले, सोचने से पहले, बोलने से पहले, कर्म करने से पहले, संबंध संपर्क में आने से पहले, किसी से भी व्यवहार करने से पहले, हम बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो किया, एक्यूरेटली उसको फॉलो कर ले, कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी, क्योंकि नंबर वन आदिदेव है ना, वो संगम का भी आदिदेव है, पहला पहला ब्राह्मण है, और सत्युग का भी पहला पहला आदिदेव है, पहला पहला श्री नारायण बनते हैं ब्रह्मा बापन, तो पहली पहली आत्मा वो है। अगर हम उनको, उनको न्यू मैन भी कहते हैं ना, अगर उनको हम फॉलो कर लें, तो अभी भी हम, भले हम साकार में रहते हैं, तो भी हम यहाँ रहते भी हम बाबा के पास सूक्ष्म वतनवासी होकर रह सकते हैं, है ना। और साथ में अभी साथ हैं और साथ हम तक रहेंगे भी, और बाबा के साथ मिलकर सारे विश्व की सेवा करेंगे। हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हम सूक्ष्म वतनवासी बन, जैसे ब्रह्मा बाबा तो 52 साल से सूक्ष्म वतनवासी बन गया, तो अभी हम सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं क्या, हर कार्य करते हुए, या ऊपर जाके सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे? पॉसिबल है ऐसा सूक्ष्म वतनवासी बनना? यस, बन सकते। आज उसको भी हम क्लियर करेंगे, सूक्ष्म वतनवासी कैसे हम यहाँ हर कर्म करते सूक्ष्म वतनवासी रह सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा तो 52 साल से रहे वहीं पर ही रह रहे, दाता, विधाता, वरदाता बन करके हम सबकी पालना कर रहे हैं, शिव बाबा से कंबाइंड होकर वरदाता के रूप में। तो अब हमें भी ये समय आ गया है कि हम भी यहाँ रहते हुए सूक्ष्म वतनवासी बन करके रहें। ब्राह्मण तो हम बन गए, किंतु ब्राह्मण बनने के साथ साथ अभी हमको क्या करना है? यहीं पर ही फरिश्ता भी बनना है और यहीं पर भी देवता भी बनना है। सत्य में जाकर देवता बनना है कि यहाँ बनना है? आप क्या समझते हैं, देवता यहाँ बनना है कि सत्य में जाके बनना है? यही बनना है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यहाँ बनना है। फरिश्ता सुदेवता बन करके, और फिर अंत में बीज रूप अवस्था को प्राप्त करके बाप के साथ, तो हम बीज रूप बन के साथ ही बन के जाएंगे ना, तभी हम बाप के साथ जाएंगे ना। तो अभी हमको अपने सारे 63 जन्मों के विक्रम विनाश भी करने हैं, और विक्रम विनाश करके हमको बाप समान फरिश्ता सुदेवता बन करके, और लास्ट में बीज रूप बन करके, बिंदी आत्मा बन करके, अश्री आत्मा बन के परम धाम घर में बाप के साथ वापिस कर जाना है, और फिर सुख धाम में वापिस बाबा के साथ ही आना है। अगर हमें बाबा के साथ आना है, बाबा के साथ जाना है, बाबा के साथ आना है, तो 100% ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। कुछ भी नया नहीं करना है। आयुष भाई मैंने बहुत सारी क्लासेस सुनते होंगे, बहुत सारी बातें सुनते होंगे, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया सुबह से लेकर रात तक, एक्यूरेटली अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं, संपन्न भी बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। शुरू से देखते हैं ब्रह्मा बाबा की लाइफ में कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू से क्या किया। अगर हम भी आज उसको अपना लें तो हम भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं। वो मैं 8 कदम आपसे बात डिस्कस करूंगा कि ब्रह्मा बाबा के पहले जो 8 कदम है ना, वो बाबा ने कैसे किए, और अगर हम उसको एकदम 100% आज से शुरू कर दें, अगर अभी से भी शुरू कर देंगे, तो हम भी कुछ ही समय में ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो हम रिटर्न जर्नी में बाबा को रिटर्न भी देंगे और रिटर्न जर्नी में बाप के साथ वापस घर जाएंगे। देखिए ब्रह्मा बाबा जब अभी ज्ञान में आए भी नहीं थे, शिव बाबा की पधारणी भी नहीं हुई थी। आज मैं पांडवभूमि में गया था, ज्ञान सरोवर गया था, तो मैंने देखा वहां पे, हम लोग उतर वहां तब से देखा है अपने जो डाली थी ना, तो लच्छू डाली हमें बाबा की डायरी था, हम देखते थे 1932-33 की डायरी होती थी। तो ब्रह्मा बाबा की डायरी में ये लिखा रहता था शुरू से 32 में, बाबा अपने आप से बात करते थे, बाबा आत्मा समझ के रोज रात को सोने के पहले कचहरी लगाते थे, मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते थे, संस्कारों से बात करते थे, अपनी कर्मेंद्रियों से बात करते थे और उनको चेक करते थे। तो ब्रह्मा बाबा का पहला पुरुषार्थ वो था अंतर्मुखता का। बाबा सदा अपने अंदर देखते थे, अपने को आत्मा समझने का प्रयास, मतलब जो बाबा की प्रैक्टिस अभ्यास था वो कोई ये नहीं कि शिव बाबा के आने के बाद शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा का पहले से ही था अपने सत्य स्वरूप को देखने का, अपने आप से बात करने का, अंदर देखने का, बाहर देखने का नहीं। तो अंतर्मुखता अर्थात एक सेकंड में जैसे डिटैच अशरीरी आत्मा, तो बाबा अपने आप को अशरीरी आत्मा समझ के अपने मन बुद्धि संस्कार को चेक करते थे रोज और चेंज करते थे, रोज देखते थे उनको, फिर काम देते थे। तो कैसे अगर हम इस अंतर्मुखता को आज से अभी से अगर इसको हम अपना लें अपने जीवन में, बाह्य मुखता को देखना बंद कर दें, बाहर देखना बंद कर दें, अगर हमको बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है तो बाह्य मुखता की आंख बंद कर लें और अपने अंदर चले जाएं, अंदर देखें मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या चल रहा है, कर्मा फिलोसफी क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, कौन से कर्म का क्या फल होता है, इसको गहराई से ब्रह्मा बाबा देखते थे। तो पहला कदम था ब्रह्मा बाबा का अंतर्मुखता, जिसकी अभी भी हम ब्राह्मणों को बहुत बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, इसको गहराई से हम महसूस कर लें और इसमें चले जाएं। पर इसको अंतर्मुखता आने के लिए पहले चार बातें चाहिए, अंतर्मुखता आने के पहले चार बातें, कौन सी चार बातें चाहिए? पहले सत्यता चाहिए। सत्यता का अर्थ क्या है? बाबा की अवैध मूल्यों में ही इसकी डेफिनेशन परिभाषा दी हुई है, सत्यता अर्थात अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, वो स्मृति में इमर्ज करो, इमर्ज कर हर संकल्प बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, इवन स्वप्न में भी आना, अर्थात सोने के पहले फिर उसको इमर्ज करो, अपना सत्य स्वरूप है अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, परमधाम वाला स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप, पावन सत्व प्रधान स्वरूप। तो इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी संकल्प करना है, बोल बोलना है, कर्म करना है, संबंध संपत्ति में आना है, व्यवहार में आना है, जीवन स्वप्न में सोने से पहले भी करो, इसको कहते हैं सत्यता। अगर ये सत्यता हमने रियलाइज कर ली चलते फिरते उठते बैठते, तब हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। अगर सत्यता को रियलाइज नहीं किया, किसी बुराई का उनको संकल्प बोल व कर्म से टच ना करना, इसको बोलते सत्यता। अगर हम सत्यता को अभी अंदर इमर्ज नहीं करते हैं तो अंतर्मुखता होना बहुत मुश्किल है। पहली जो है रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, पहली हमारी जो आवश्यकता है अंतर्मुखी मन सत्यता। इसलिए महाली ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप देख लिया, महसूस कर लिया, इसमें से तो संकल्प बोल करना सीख लिया, संबंध संपर्क में आना सीख लिया, व्यवहार में आना सीख लिया, वो अंतर्मुखी रह सकता है। दूसरी बात है पवित्रता। सत्यता और पवित्रता में क्या फर्क है? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति को अंदर इमर्ज करके, और सामने वाला चाहे मेरे लौकिक परिवार वाला हो, चाहे अलौकिक परिवार वाला हो, संबंध संपर्क वाला हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति फॉर दैट मैटर हो, कोई भी दुनिया का हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को के साथ व्यवहार में आने से पहले उसके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि पावन तत्व प्रधान स्वरूप को इमर्ज कर। क्योंकि हम जो ब्राह्मण परिवार में है वो तो हम सभी देवी देवता बनने वाले हैं, ये तो 100% गारंटी है। तो उनका भी हम अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करें। इवन हमारे लौकिक परिवार में भी जो है, हमारे माता पिता, भाई बहने, पति पत्नी, बच्चे जो भी हैं, वो भी देवी देवता परिवार में आने ही वाले हैं। भले सत्युग में नहीं आएंगे, आज ज्ञान में नहीं चलते, त्रेता के अंत पे जरूर आएंगे जरूर, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा उनका संबंध संपर्क है, वो जरूर जानते हैं, वो ज्ञान से एक्सपोज होंगे ही होंगे और अभी भी वो एक्सपोज हैं, ज्ञान की बुद्धि में है। तो और जितने दुनिया वाले हैं द्वापर में भी आएंगे, कलयुग में भी आएंगे, तो आएंगे तब तो पावन सत्व प्रधान के रूप में आएंगे। पहले सत्व प्रधान आएंगे, फिर सत्व, इवन जो एक जन्म वाली आत्मा भी जब आती है तो पहले क्या बनती है? पहले सत्व प्रधान होती है, फिर सत्व, फिर रजो, फिर तमो, एक ही जन्म में चारों स्टेज आ जाती है। तो हमेशा हर आत्मा को जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, इसको कहते हैं पवित्रता। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरों के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार में आना, इसको बोलते हैं पवित्रता। अगर ऐसी पवित्रता है तो अंतर्मुखी बन सकते हैं। अगर ऐसी पवित्रता नहीं है तो हम जरूर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसी पवित्रता, इसमें लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाता है, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है, और हम ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बन जाते हैं। शिव बाबा से कंबाइन रहना चाहिए जाता है परम धाम में, और ब्रह्माचारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए जाता है हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में। तीसरी जो क्वालिटी है, तीसरा जो आवश्यकता है अंतर्मुखी बनने के लिए, वो है निर्भयता। बिना निर्भयता के अंतर्मुखी हो नहीं सकते। निर्भयता की परिभाषा क्या है? जिस हमारी दो आंखें हैं ना, कौन सी आंखें? राइट और लेफ्ट। बाबा ने कहा निर्भय कौन बन सकता है? जिसकी एक आंख परम धाम में बाप के साथ कंबाइंड हो, उसको देखती रहे परम धाम में बाप को, और दूसरी आंख सुख धाम में अपने लक्ष्य को, देवी देवता स्वरूप को, श्री कृष्ण जैसे स्वरूप को देखती रहे, उस पर टिकी रहे। तो कौन सी आंख परम धाम में, कौन सी आंख सुख धाम में? बताओ भाई, सबने भाई बैठे बताओ, कौन सी वाली आंख है जी? आत्मा की दो आंखें हैं ना, ये आंख राइट और लेफ्ट आंख की बात नहीं है, बुद्धि रूपी आंख, क्योंकि राजयोग क्या है? बुद्धि योग है ना। तो बुद्धि रूपी आंख सदा परम धाम में बाबा से कंबाइंड है, शिव बाबा से कंबाइंड है, और मन रूपी आंख सदा अपने लक्ष्य पे लगी रहे, अपने देवी देवता स्वरूप श्री नारायण, नर तो श्री नारायण, नारी तो श्री लक्ष्मी, इस स्वरूप को इमर्ज रखे, तो मेरे अंदर निर्भयता आ जाएगी। जब मेरी बुद्धि और मन दोनों ही यहाँ पर नहीं है तो इस दुनिया में जो मर्जी होता रहे मुझे डर नहीं लगता है। तो जब ये तीसरी क्वालिटी आ जाती है तो अंतर्मुखी होना सहज हो गया। अगर थोड़ा डर लग रहा है तो हम अंतर्मुखी नहीं होते, फिर भय बाहर बुद्धि जाती है, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा अभी ये हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, अंतर्मुखी हो नहीं सकते। और चौथी जो क्वालिफिकेशन है वो है सभ्यता, सिविलाइज्ड ना। जब हम सिविलाइज्ड बन जाते हैं, सबके उस सबको उसके सत्य स्वरूप में देखना शुरू कर देते हैं, और मर्यादा पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। मर्यादित, बाबा ने एक मुझे कहा था, बड़ों को रिगार्ड तो देना ही है, अभी छोटों को भी रिगार्ड देना है। छोटों को बड़ा समझ के रिगार्ड दो, क्योंकि उम्र से छोटे हो सकते हैं, किंतु आपकी क्वालिफिकेशन में गुणों में आपसे बड़े हो सकते हैं। इसलिए आज छोटे को भी बड़ा समझ के रिगार्ड देना चाहिए। तो हमें सभ्यता, सिविलाइज बिहेवियर, ये व्यवहार हमारा होना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सत्यता, पवित्रता, निर्भयता और सभ्यता, अगर चार क्वालिफिकेशन को अपने अंदर हम कल्टीवेट करें, अंदर डेवलप करें, तो हम अंतर्मुखी बन सकते हैं। तो पहला कदम जो ब्रह्मा बाबा का था वो है अंतर्मुखता। तो इसके लिए पहले चार हमें विशेषताएं अपने अंदर पैदा करनी होंगी, और जितना जितना हम इन विशेषताओं को अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे, हम अंतर्मुखी बनते जाएंगे। देह और देह की दुनिया के बाहर की दुनिया को देखना बंद करके अंदर देखना शुरू करते हैं, अंदर से बाबा को रियलाइज करना शुरू करते हैं, अंदर से अपने सत्य को रियलाइज करना शुरू करते हैं। अपनी मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, और सूक्ष्म वतन और परमधाम मेरा घर है, इसको अंदर से देखना शुरू करते, महसूस करना शुरू करते हैं। तो जितना हम इसको रियलाइज करेंगे, जितना इसको महसूस करेंगे, क्योंकि बिना सच्ची दिल की महसूसता के परिवर्तन नहीं होता। चार कदम है, चार बातें हैं, अगर हमें कुछ भी हमें अंदर परिवर्तन करना है, तो पहला परिवर्तन, पहली बात है, सत्य को समझ लो अच्छे से, गहराई से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। सेकंड, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। थर्ड, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ। और चौथा, बिकमिंग द ट्रूथ। अर्थात पहला है सत्य को समझना, गहराई से समझो, ज्ञान की गहराई। जैसे आज की मुरली थी, शुभ भावना, शुभकामना, सूक्ष्म सेवा, इसको गहराई से समझ लो, गहराई से उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज एंड रियलाइज, बार बार मन मन में मनन करो। जितना मनन करते जाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी, और फिर एक एक महावाक्य को महसूस करो। जितना महसूस करते जाएंगे, सच्ची दिल से महसूस करेंगे, तो हमारे को वो अंदर अनुभूति आती जाएगी। बिना सच्ची दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है, और अनुभूति नहीं होती तो प्राप्ति नहीं होती है। और जब हम बहुत सारी, जब हमें जो प्राप्ति हो जाती है, तो प्राप्ति होने से क्या होता है, कल का वरदान याद कर लो। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, अपना अनुभव। तो जब आपको अनुभूति होती है, तो प्राप्ति होने लगती है, और प्राप्ति से अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है, और अनुभव की अथॉरिटी बनने से हमारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं। क्योंकि हमें अल्टीमेट लक्ष्य क्या है हमारा, पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन होकर दैविक, हमारे दैवी स्वभाव और दैवी संस्कार बन जाए, तो हमको ये परिवर्तन करना। तो पहला जो हमें कदम, अगर ब्रह्मा बाबा का हम उसको पूरा फॉलो करें, रोज सोने के पहले अपनी कचहरी बना लगाए, एक तरफ मन बुद्धि संस्कार को लगा दें, एक तरफ पांचों कर्मेंद्रियों को लगा दें, और सामने आठ अंगों को बिठा दें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम, पांचों कर्मेंद्रिय और इम्यून सिस्टम, और फिर हमारी जो है पांच कर्मेंद्रिय हमने यहां लगा दी, तीन मन बुद्धि संस्कार इधर दरबार में बिठा दिए। एक एक से बात करो, मन से बात करो, बुद्धि से बात करो, संस्कार से बात करो, आंख से बात करो, नाक से बात करो, कान से, मुख से, त्वचा से, कि कहां पर तुम्हारा आज क्या हाल है। आठों अंगों से पूछ लो, दिमाग से पूछ लो, अपना आवाज जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है वो कैसी है आज, हमारा लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा पेट आंतें कैसे काम कर रही है, हमारा हार्मोनल सिस्टम कैसा काम कर रहा है। खबर तो लो कम से कम उनकी रोज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुमको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं कुछ गलत तो नहीं खा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं व्यवहार कर रहा हूँ, उनसे उनसे पूछ लो तबीयत ठीक है आपकी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आज के समय बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आत्मा को कोई ना कोई कर्म हो गए, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो उसको फेस करना पड़ रहा है ना। तो रोज उसकी हालचाल पूछ लो, मैं तो रोज ऐसे करता हूँ सोने के पहले। तो हर अंग से, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने वाला सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट का सिस्टम, जीआई सिस्टम, मतलब आंतें, लीवर और पेट, और फिर हमारा हार्मोनल सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियास, एड्रिनल और मेल फीमेल ग्लैंड, या सात ग्लैंड होती है, इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ सोने के पहले। तो मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ चाहिए क्या आपको, मैं आपके साथ कुछ गलत तो व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, आपको आनंद चाहिए, लैंड को क्या चाहिए, आनंद चाहिए, आपको आनंद मिल रहा नहीं मिल रहा, कमी तो नहीं पड़ रही। जैसे बच्चों को पूछ रहे थे कि क्या हमारे बच्चे ही ना, ये आठ हाथ क्या है हमारे बच्चे ही हैं, इनको हम नरिश करना है ना, आत्मा के बच्चे ही ना, ये तो नरिशमेंट तो करनी है। हमारी जो 206 हड्डियां हैं हमारी है ना, इतने सारे जोड़ है, उनसे पूछ लो भाई ठीक ठाक है आपकी हालत, ठीक चल रहा है, ठीक से चल रहा हूँ मैं, ठीक से बैठता हूँ उठता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको, रोज उनसे हाल चाल पूछ लो, कुछ चाहिए आपको है ना। और फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनी इतना काम करती है रोज एक घंटे, हर घंटे में हमारा खून साफ हो रहा है, 24 घंटे में 24 बार खून साफ करती है। अगर एक बार डायलिसिस कराने जाओ तो आपको 3,000 रुपये लगे है ना, 2,500 रुपये लगे है ना, तो कितना काम करती है किडनी एक दिन में, 50,000 रुपये जैसे काम करती है ना, और 24 घंटा करती है, हम सो जाते तो भी करती है। तो रोज कचहरी रख, अंतर्मुखी होकर रोज अपने आप से अपनी रोज चेकिंग रख, तो पहला कदम। दूसरा कदम क्या था, ब्रह्मा बाबा को 34 में जब बाबा बनारस में थे तो बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, और ब्रह्मा बाबा बाहर थे गार्डन में, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हम लोग देख के आए हुए जगह बनारस में, तो ब्रह्मा बाबा को वहां विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा मिसाइल्स कैसे गिर रहे हैं, बड़े बड़े बम एटम बम गिर रहे हैं, कैसे मशरूम बन रहा है, कैसे बड़ी बड़ी मंजिलें गिर रही हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, 5 तत्वों का इकट्ठा अटैक हो रहा है। तो बाबा कहते, बाबा एकदम से अंदर से बहुत वो हो गए, उद्वेलित हो गए है ना। तो बाबा ने देखा सब दुनिया जाने, बाबा को सचमुच लगा कि दुनिया जाने वाली है, और बाबा थोड़ी देर के बाद अपने जब अंदर गए तो अंदर का साझीदार अंदर ही था, क्योंकि उसका घर था वो जहां पर बाबा आए हुए थे बनारस में, और उसी दिन उससे बात की, क्योंकि ब्रह्मा बाबा दादी से शेयर करते थे ना, दादी ने बताया, उसी दिन शेयर किया कि अब मुझे अपना और बिजनेस नहीं करना है। तो तुरंत बेहद की वैराग्य वृद्धि हो गई, देव और देखी दुनिया से बेहद की वैराग्य, मुझे अब ये सब दुनिया जाने वाली है, मुझे धंधा नहीं करना, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, तुम अपना अलग, तुम धंधा पूरा बाकी संभाल लो। तो बाबा ने जरा भी सोचा नहीं, झाटकू जिसे कहते ना झाटकू, और हम क्या करते, हम क्या करते, बिना अंतर्मुखता के, बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के, जो ब्रह्मा बाबा को पहले दिन से आ गई, ये नहीं कि ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के अंदर एकदम आ गया 36 में, नहीं, बाबा उसकी तैयारी पहले से कर रहे थे, उसका पात्र बनना जरूरी है, मैं सूक्ष्मतन में जा सकूं, मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो सकूं, करंट आए मेरे अंदर, तो इसके लिए बिना अंतर्मुखता के और बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो अनासक्त वृत्ति आएगी ना। वैराग्य, वैराग्य शब्द कहां से आया, वैर और राग, ना कहो से दोस्ती ना कहो से प्यार, ना मेरे अंदर किसी के प्रति वैर हो ना किसी से राग हो, बेहद का, सारे विश्व में इस देह और देह की दुनिया में किसी चीज से, किसी से मेरा वैर नहीं, किसी से मेरा अटैचमेंट है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये देह और देह की बाबा क्लियर हो गया कि देह और देह की दुनिया जाने वाली है, देह भी रहने वाली नहीं है, ये देखे संबंध संपर्क सब जाने वाले, देखे पदार्थ सब जाने वाले, देखे जो भी कुछ देखते हुए नाखून सब जाने वाला है, बाबा ने देख लिया, और तुरंत बाबा को वैराग्य हो गया, क्योंकि जब तक यहां से अटैच, यहां से डिटैचमेंट नहीं होगा तब तक वहां अटैचमेंट नहीं हो सकता, और जब तक वहां से अटैचमेंट नहीं होगा तो हमारे अंदर करंट आएगी नहीं। 63 जन्मों के पापक्रम, जो 63 जन्म से हम जन्म से हम पापक्रम करते आए, वो विनाश होंगे नहीं, विक्रमाजीत बनेंगे नहीं, विक्रमाजीत बनेंगे तो कर्मातीत बनेंगे नहीं, कर्मातीत नहीं बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे नहीं, फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता बनेंगे नहीं, देवता नहीं बनेंगे तो बीज रूप स्थिति आएगी नहीं, बीज रूप स्थिति नहीं आएगी तो साथ कैसे जाएंगे, बाबा के साथी बन के कैसे जाएंगे, फिर तो बाराती बन के जाना पड़ेगा। तो कर्मातीत बनना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि बिना अटैचमेंट के यहां वहां अटैचमेंट होगी नहीं, तो इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होना अति आवश्यक है। तो अभी है बेहद की वैराग्य वृत्ति आ गई, थोड़ी है कहीं अटैचमेंट, देखो अपने आपको चेक करो ना कि बेहद की वैराग्य वृत्ति आई कि नहीं आई, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी तो अनासक्त वृत्ति आएगी, आपस में कनेक्शन है। जब तक कहीं वैर और राग है तो कहीं ना कहीं आसक्ति आती रहेगी, ये खा लूं, ये देख लूं, जरा मैं भी दुबई चक्कर लगा के आ जाऊं, मैं भी यहाँ चक्कर लगा देख लूं, ये महल देख के आ जाऊं, वो देख करके आ जाऊं, वो देख लूं, ये खा लूं, इस तरह की इच्छा पैदा होती रहेगी, नहीं आसक्ति, कुछ खाने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ बोलने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा है ना, कुछ छूने की इच्छा, کہیں نہ کہیں آسکتی آسکتی آئی شکتی آ نہیں سکتی ہے. اور جب تک اناسکت ورتی نہیں ہوگی اکرام ورتی نہیں ہوگی. اکرامنا یہ دیو دیکھ دینے سے اکرام نہیں ہو سکتے. جب اکرام ہو جائیں گے تب ایکانت واسی بن سکتے. جواب ہے ایکانت واسی ایکانت اور ایکاگرتا, اس کے بغیر سائلنس پاور آ نہیں سکتی ہے. اور بنا سائلنس پاور کے وائلنس وائسلس بن نہیں سکتے. تو ایک کے انت میں کھو جائیں, گیان ساگر کے انت میں کھو جائیں, پویترتا کے ساگر کے انت میں کھو جائیں, شانتی کے ساگر کے انت میں کھو جائیں, ستیہ اور نسوارتھ پریم کے ساگر کے انت میں کھو جائیں, اتیندر سکھ کے ساگر کے تلے میں چلے جائیں, اتیندر سکھ کے ساگر میں سما جائیں, آنند کے ساگر کے تلے میں چلے جائیں, اور پھر ایک ایک شکتی کو ہم دل سے محسوس کرتے رہیں, اس کی انوبھوتی ہوتی رہے, اور پریکٹیکل میں اس کا اپلیکیشن کر کے ہم لوگوں کی اتھارٹی بن جائے, ستیہ کو پرکھنے کی شکتی آ جائے, اس کے ساگر میں چلے جاؤ, یتھارتھ نرنے کرنے کی شکتی کے ساگر کے تلے میں چلے جاؤ, وستار کو سار میں لانے کی شکتی وہ اپنے اندر آ جائے, سمیٹنے کی شکتی من بدھی کو سمیٹ کے بندی آتما بن کے پرم دھام گھر میں بندی باپ سے کمبائنڈ رہنا سیکھ جائیں, لگاتار کمبائنڈ رہ رہے ہیں. جیسے کمبائنڈ رہیں گے تو کرنٹ آنی شروع ہو جائے گی, بیٹری چارج ہوتی ہے, تو سہن کرنے کی شکتی آ جاتی ہے. تو پرماتما شیو بابا سہن کرنے کی شکتی کا ساگر ہے. دنیا میں کیا کیا پریورتن ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, بابا سہن کرنے کی شکتی کا ساگر ہے. سمانے کی شکتی آ جائے, سامنا کرنے کی شکتی کے ساگر کے تلے میں چلے جائے, سہیوگ کرنے کی شکتی کے ساگر کے تلے میں چلے جائے, اور ساتھوں انرجی کا بھی بیلنس ہو جائے. یہ نہیں کہ گیان زیادہ ہے پویترتا تھوڑی کم ہے, گیان پویترتا ہے کنتو شانتی تھوڑی کم ہے, تھوڑا پریم کم ہے, نہیں, ساتھوں انرجی بیلنس میں آ جائے, سمجھت سے ہو جائے, اور ہیلنگ انرجی پیدا ہو جائے, اور جوالا مکھی شکتیشالی یوگ اگنی کے ساگر کے تلے میں چلے جائے. یہ جو ہے بہر کی ویراگی ورتی کے بنا پوسیبل نہیں. اور اس میں پھر ایکاگر ہو جائیں, تو یہ جو ہے جب یہ ہوتا ہے تو ایک نامی آتی ہے, اور جب ایک نامی آتی ہے تو بابا اندر آتا ہے. تو جیسی بابا کی پدرامانی ہوئی, بابا 36 میں جب تھے نا وہاں پر جو ببول ناتھ کا مندر ہے نا سامنے, جو بامبے میں جو تھا اس کے سامنے بابا کا گھر تھا, وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو کیسے بابا کے گھر میں ستسنگ چل رہا تھا, اور کیسے بابا اپنے کمرے میں گئے, اور وہاں بابا کا پدرامانی ہوئی, شیو بابا کی پدرامانی. تو شیو بابا تھا ان کے سر میں آئے, اور جیسے ہی بابا سر میں آئے بابا نے سب کو سمرپن کر دیا. تیسرا جو قدم تھا بابا کا سمرپن تھا. بابا نے اپنا تن, اپنا من, اپنا دھن اور اپنا سمبند, سبھی سمبندوں کو بھی, اور میں اپن کی بدھی کو, پانچ باتیں بابا نے سمرپن کر دی, ترنت سمرپن کر دی اپنا تن کو بابا کی. بابا نے اس کے بعد کبھی نہیں بولا کہ تن میرا ہے, بابا کا رتھ ہے, شیو بابا کا رتھ ہے, میں نے لون پہ دے دیا, یہ بابا کی امانت ہے, یہ حسین کا رتھ, حسین کا گھوڑا ہے. بابا نے کبھی نہیں کہا میرا رتھ ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہے, چیک کرو, اگر برہما باپ سمان سمپن اور سمپورن بننا ہے تو یہ تن میرا نہیں ہے, کس کا ہے, یہ بابا کی امانت ہے. ایسے سوکشم وطن جانے کی فیس بھی ہے, جس کو سوکشم وطن واسی بننا ہے یہ اس کی فیس ہے. جب ہمارے یہاں ہارٹ کا پروگرام ہوتا ہے تو ہارٹ کے پروگرام میں سوکشم وطن میں جا کے ان کا آپریشن ہوتا ہے, اسپرچل آپریشن ہوتا ہے نا, تو فیس جمع کرانی پڑتی ہے پہلے کہ تن من دھن اور یہ جمع کرا دو. یہ اب سے آپ کا نہیں ہے, بابا کا ہے. تو اپنے تن کو اپنا کہنا فیل کرنا بند کر دو, تن یہ بابا کا ہے. تو بابا نے اپنا تن سمرپن کر دیا, اس کو سدا امانت سمجھ کے, بابا کی امانت سمجھ کے یوز کیا, اس کو اسی طرح سے مینٹین بھی کیا. اس کے لیے آہار کیا چاہیے, سیر ڈیلی ویام کرنا, سمے پر سونا, سمے پر اٹھنا, ہر چیز بابا نے نیم پوروک کی, ہر چیز میں نیم مریادا پہ چلے. تو یہ تن اس کی امانت ہے, بابا کا تن ہے, تو مجھے بابا کے تن کو اس کی امانت سمجھ کے یوز کرنا. اس کے لیے کیا آہار, ویشنو آہار, شدھ ساتوک بھوجن اس کو دینا ہے, سمے پر دینا, بابا کی یاد میں دینا ہے, اور سیر روز کرنی ہے. بابا نے روز کبھی سیر مس نہیں کی, صبح ویام کیا, شام کو بابا نے کھیلتے تھے, بابا ریگولر, کبھی بابا نے مس نہیں کیا, اور بابا نے نیند بھی سمے پر بابا کرتے تھے. بابا حالانکہ بہت جلدی اٹھتے تھے, تو بابا کو ایک دم ہر چیز میں ایکوریٹ دیکھا, مریادا سمپن دیکھا. تو یہ جو ہے ہمیں سمرپن تھا دیکھنے, من بھی بابا نے منمانا بھاو کر دیا, संकल्प भी थोड़ी थोड़ा संकल्प भी बाबा ने अपनी मर्जी से नहीं किए, थोड़ी कोई बात ही तुरंत संदेश को भेजा, जब बच्ची ऊपर जाकर बाबा से पूछ के आओ, थोड़ी सी बात भी हो गई। हालांकि बाबा इतने मैच्योर थे, इतने अनुभवी युक्त थे, फिर भी बाबा थोड़ी थोड़ी बात के लिए बच्चों को सिखाने के लिए भी करते थे कि हर बात बाबा से पूछी जाए, हर बात बाबा की डायरेक्शन लेके फिर उसके अनुसार कर्म किया जाए। तो बाबा ने संकल्प भी कभी अपनी मर्जी से नहीं किया, बाबा ने मनमाना भव कर दिया अपने मन को सदा के लिए। तो ये मनमाना भव धन, पूरा का पूरा धन बाबा ने कभी परवाह नहीं, कल क्या होगा, बाबा ने पूरा धन लगा दिया, कल की चिंता नहीं करते हुए पूरा धन लगा दिया, पूरा धन बाबा ने ट्रस्ट बना के पांच बहनों का, है ना, आप सबको पता होगा, दीदियां बैठी उनको सारा पता ही है, ये दो और भाई बहनों को भी पता होगा कि बाबा ने ट्रस्ट बना दिया, उसके बाद कभी भी उस धन को अपना धन नहीं समझा, बाबा का सब बाबा को दे दिया। और फिर संबंध जो बाबा के संबंध थे उनको भी अलौकिक से अलौकिक बना दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं, यशोदा माता भी रही, दादियां भी, शांता दादी, नारायण दादा और जो भी थे सबको अलौकिक से अलौकिक बना दिया। और बाबा समर्पण होने के बाद जिस दिन बाबा आए हैं, जिस दिन बाबा की पधरामणी हुई है, उस दिन के बाद बाबा एकदम डिफरेंट हो गए, मतलब बाबा को देख के यशोदा भी उनको अपना पति नहीं समझ सकी, बाबा ही कहा। निर्मल शांता दादी बताती है कि हम बाबा को उस दिन देखने के बाद, बजेंद्र दादी का एक अनुभव था कि वो कभी उनके बाद उसको कभी अपने ससुर के रूप में देखा ही नहीं, उसको कभी अपने बाप के रूप में देखा ही नहीं, बाबा ही बस, बाबा बेहद का बाबा, चेहरा मोरा ही बदल गया, है ना, टोटल सरेंडर कर दे, इतना चाटकू है ना, हलाल नहीं, पीस पीस नहीं है, पीस पीस नहीं होना है ना, थोड़ा सा आज समर्पित हुए, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, नहीं एकदम। तो अगर हम ऐसा समर्पण कर दें, ब्रह्मा बाबा समान, तो ही संपन्न और संपूर्ण बन सकते। और मैपन की बुद्धि को भी बाबा ने समर्पण कर दिया, जरा कभी मैपन की बुद्धि ने लेकर के आए, बाबा ने जो कहा जैसा कहा बाबा ने वो फॉलो किया, तो 100% बाबा ने अपनी बुद्धि को भी यूज नहीं किया। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने जैसे श्रीमत के अनुसार एग्जाम्पल कोई नहीं था बाबा के सामने, जैसे पहले भी कहा, तो बाबा की जो श्रीमत थी मुरली, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पीछे मुरली आई थी ना ज्ञान मानसरोवर, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ये मुरली जो है ज्ञान मानसरोवर है, हमेशा इसमें डूबे रहे। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, दादियों को भी हमने देखा, दादी जानकी को देखा, दादी प्रकाशमणि जी को देखा, निर्मल शांता दादी को देखा, सभी दादियों को हमने देखा, आप सबने देखा होगा कि दादियां कैसे बस बाबा 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 ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा और मुरली, बाबा और मुरली, बाबा और मुरली, यही बाबा बुद्धि, अपनी बुद्धि नहीं, श्रीमत में मनमत जरा भी मिक्स नहीं की ना, दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि का साधन क्या है, रिफाइंड साधन क्या है, इंजन उसका जो पेट्रोल क्या है, श्रीमत, अगर श्रीमत में थोड़ी मनमत हो ना किचरा है, थोड़ी परमत हो, नहीं उसने ये कहा ऐसे करके देख लेते, नहीं श्रीमत एकदम बस समर्पण था, एक नाम ही हो गए, एक नाम समर्पण बाबा, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ये हमारे बाबा ने ये पक्का करके दिखाया, जैसे ही बाबा ने समर्पण किया, बाबा को सहनशीलता का चौथा कदम था सहनशीलता, बाबा एकदम, बाबा को जो एकदम कभी एक शब्द नहीं सुना लौकिक जीवन में बाबा ने, बाबा बहुत सम्मानित व्यक्ति थे लौकिक में भी और पूरे सिंध हैदराबाद में, बाबा किसी ने बाबा ने बाबा की बहुत रेस्पेक्ट थी, बाबा एक धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हीरे के व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो बाबा को सब रिगार्ड, राजा लोग भी रिगार्ड करते थे, बाबा कहते राजा, सुना होगा आपने लकी बाबू आपको राजा बनना चाहिए था, हम तो ऐसे ही गलती से राजा बन गए, उनका चाल चलन हर चीज मर्यादित था बाबा का, तो बाबा तो ऐसे थे ना, तो जैसे ही बाबा ने किया लौकिक परिवार से भी और पूरे सिंध हैदराबाद से, इवन सिंध हैदराबाद को छोड़ो पूरे विश्व से, पूरे देश में अखबारों में इतने अपशब्दों की बारिश हुई बाबा के ऊपर, इतनी वर्षा हुई सब तरफ से, बाबा को बहुत अपशब्द सुने, गालियां सुनी, बहुत पेपर आए, लोगों ने बहुत तंग किया, हसरत से तंग किया, जो बच्चे थे बाबा के पास आए थे उनके रिश्तेदारों ने बहुत तरह से उनको बाबा को तंग किया, सब तरह के बाबा के ऊपर टेस्ट हुए, पर बाबा कभी नहीं घबराए, सहनशीलता, बाबा एकदम सहनशीलता का स्तंभ बन गए। कभी भी बाबा के चेहरे पर नानियां बताती, कभी बाबा के चेहरे पर कोई चिंता का असर, जिसने टिकटिंग हो रही थी कोई आग लगा दी, बाबा के चेहरे पर जरा भी चिंता का असर नहीं था, जरा भी नहीं था, अंश मात्र भी नहीं था ना। एकदम बाबा ऐसे ऐसे बन गए। तो इतना निश्चय बुद्धि, नंबर वन निश्चय बुद्धि और नंबर वन विजय, ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल, तो हमको भी ऐसा ही बनना होगा। बन सकते आपको प्रत्यक्ष तो करना नहीं करना, तो सहनशीलता है ना। और मैं देखा है जहां सत्यता होती है वहां सहनशीलता होती है, क्योंकि बाबा सत्यता में रहे, अंतर्मुखी रहे, बेहद की वैराग्य वृत्ति थी और समर्पण सब कुछ कर दिया था, तो सहनशीलता आ गई। परफेक्ट एग्जाम्पल बाबा बन के रहे। और फिर बाबा का ये 14 साल की तपस्या शुरू हो गई है ना, 36 से लेकर के और 50 तक तपस्या चली, अंतर तपस्या, कर्मयोगी बने। बाबा ने खुद घर कर्म करके दिखाया, कोई ये नहीं कि बाबा ने क्या 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 किया, आप तुमने सुना होगा है ना, मैकेनिक भी बने, मोची भी बने, चप्पलें भी सिलवाई, चप्पलें भी सिली नहीं सिली, बच्चों को जूते बनाना सिखाया, चप्पल बनाना सिखाया, बर्तन साफ करना, बड़े बड़े कढ़ाई बाबा खुद भी करते थे, कराते थे, गोबे गोबर के उपले भी बनाए, खुद कर कराते थे हर काम, दाल साफ करना, गेहूं साफ करना, चावल साफ करना, हर काम बाबा ने करके दिखाया, कर्मयोगी। किंतु बाबा की स्थिति ऐसी बेहद की, कोई मिलने भी आता था तो बाबा एकदम साधारण कर्म, किंतु स्थिति बेहद की अलौकिक स्थिति। हर योग, क्योंकि आपको ये पता हो कि आत्मा बिना कर्म के एक सेकंड भी रह नहीं सकती है। आप सोचे कैसे, हमारा हार्ट 70 बार एक मिनट में धड़कता है, एक मिनट में 70 बार, एक सेकंड में एक बार तो धड़कता नहीं, धड़कता है आत्मा है तो धड़कता है ना, अगर आत्मा नहीं हो तो धड़केगा क्या। तो आत्मा बिना कर्म के शरीर में एक सेकंड भी रह नहीं सकती। और इससे भी बड़ी बात क्या है, एक सेकंड में एक कोशिका में 1,00,000 रिएक्शन होती है, एक सेकंड में साफ भी हो जाती है एक कोशिका में। हमारे शरीर में 80,000 कोशिकाएं हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में है, शांत है ना, जब हम ऐसे हैं नॉर्मल शांत, ना शांत है ना अशांत, 1,00,000 रिएक्शन हो रही है, जल्दीबाजी करते 1,20,000 हो जाती है, चिंता करते 1,40,000 हो जाती है, चिड़चिड़ करते 1,60,000 हो जाती है, गुस्सा करते 1,80,000 हो जाती है, और उदास करते 1,02,00,000 हो जाती है। और वो टॉक्सिन बॉडी की तरफ 1,00,000 टॉक्सिन के रिएक्शन के टॉक्सिन को बाहर निकाल सकती है, किंतु बाकी को निकाल नहीं सकती, इसलिए वो टॉक्सिन अंदर जमा हो जाते, बीमार होने लगते, वो सेल्स बीमार हो जाती, कोशिकाएं बीमार, इससे थके थके रहते, हाथ पर में दर्द होती है, सिर भारी हो जाता, आंखें थक जाती है, गर्दन थक जाती है, हार्ट थक जाता है, सांस ठीक से नहीं आता है। और अगर हम मेडिटेशन करके क्या करते हैं, बाबा को याद राजयोग करके हम तो शांति को महसूस करते हैं, 20-30,000 हो जाती है, तो 20,000 हम टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हैं हर सेकंड। अगर प्यार सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार में सबको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना दिल से, तो 60,000 हो जाती है, खुशी माना संतुष्टता आ जाती, संतुष्ट रहने लगते हैं, बाप आना तो सब पा लिया, काम किया बाकी रहा, बाप मिल गया बाकी क्या, बाकी कुछ चाहिए नहीं, तो 40,000 हो जाती है, और आनंद आ गया, आत्मा देवते की दुनिया के परे चली गई, प्यार बाबा के प्यार में लवलीन हो गई, बंधन मुक्त हो गई, आन माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति को महसूस करती है, तो 20,000 सारे टॉक्सिन बाहर, बीमारी खत्म। तो ये स्थिति हमारी, तो आत्मा एक सेकंड भी बिना कर्म के रह नहीं सकती है। तो अगर हम योग पहले कर्म बाद में, तो निरंतर योगी बनने का साधन क्या, कर्म योगी। तो बाबा ने निरंतर योगी, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, देखो बाबा का हाथ को देखो, तो किसी टाइम जाओ बाबा योग में मस्त एकदम। योग निद्रा क्या होती है, निद्रा योग क्या होता है, निद्रा जीत क्या होता है, बाबा ने उसका एग्जाम्पल बनकर दिखाया। 5 मिनट अगर अनंत आनंद की स्थिति का अनुभव कर लो आप, बियॉन्ड चले जाओ ना, अनंत की स्थिति में चले जाओ, तो 5 मिनट की वो स्थिति, आनंद की स्थिति 5 घंटे की नींद के बराबर काम करती है। बाबा ने अंत में कहा ना, आपकी 5 मिनट की 5 मिनट आनंद की स्थिति, आपको नींद का समय मिलेगा ही नहीं, वही योग निद्रा, इसे कहते हैं योग निद्रा, योग में नींद का नींद पूरी हो जाए, वो स्थिति आपकी नींद की स्थिति बन जाए। निद्रा योग सोने के पहले सब कुछ साफ था, पोता मिल सच्चा की मुड़ी था, सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को देखे सब कुछ बता के बाप की गोद में सो जाना, वो है निद्रा योग। और निद्रा जीत है ना, ऐसे फ्रेश रहना, सदा रिफ्रेश रहना, अलर्ट और एक्यूरेट रहना कि आपको इतना योग कर्मयोगी बनने से निद्रा जीत बन जाते हैं। हमें नींद नहीं आती ना अमृतले में ना अमरुली में ना किसी टाइम, ऐसे नींद नहीं कि हम अपने जब सोने का समय तो नींद आएगी, दिन में काम करते करते नींद नहीं आएगी, योग में या मुरली में या किसी उस पर नींद आए, नींद हावी हो जाए, काबू कर ले, उपास्या नहीं आएगी। तो तीनों स्थिति कर्म योगी स्थिति से बनती है, तो बाबा उसके परफेक्ट एग्जाम्पल बने। पर याद है ना, याद है ये बात, बिना अंतर्मुखी बने, बिना अंतर्मुखी बने, बिना बेहद की वैराग्य वृत्ति के, बिना किसके समर्पणता के, बिना सहनशीलता के कर्म योगी बन नहीं सकते। ये पांचवा कदम था ब्रह्मा बाबा का। अगर हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कर्म योगी बनना पड़ेगा, तभी हम निरंतर योगी बन सकते हैं, अभी हमारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। फिर छठा कदम था बेफिक्र बादशाह। तो ब्रह्मा बाबा सहनशीलता के अवतार तो थे किंतु बेफिक्र बादशाह, कुछ भी जब ब्रह्मा बाबा को सामने शुरू से ही जब प्रॉब्लम आई, समस्याएं आई, बाबा सदा बेफिक्र रहे, रूहानी फकुर में रहे, बाबा सदा नशे में रहते थे, कुछ भी हुआ बच्चे कुछ नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, हर बात में बाबा बैठा है, दादी जानकी बोलती थी ना बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा हर बात में, बाबा बैठा है बस, चाहे खाने को नहीं था, कहते 10 बजे तक आटा नहीं था घर में, है ना, 350 बच्चे घर में थे और आटा घर में था नहीं, 12 बजे बेल बजनी थी और तो भी बाबा के चेहरे पर जरा भी चिंता की रेखा नहीं थी, क्या होगा नहीं, और 12 बजे तक आटा भी आ गया और सब कुछ हो गया और खाना भी मिल गया, बैल भी बच गई, खाना सबको मिल गया। तो ये निश्चय था ना, ये बेफिक्र बादशाह, बैगरी पार्ट चला, इतनी बीमारियां पैसे थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं, इतने बच्चे बीमार हुए, ठंडी में जब आए बाबा 1950 में जब पूरे ब्रिज कोठी में आके रहे, इतनी ठंडी थी बच्चों से सहन नहीं होती थी, किंतु बाबा ने कैसे कैसे हर एक बाबा बेफिक्र बादशाह रूहानी फकुर नशे में, जैसे कुछ हर बाबा कुछ भी चीज देते बच्चे ठीक हो जाते थे, बाबा कहते ऐसे कर दो ऐसे कर दो, कहां बीमारी है बच्चे, कहां बुखार है, बुखार था ही नहीं, और सच में बुखार होता था, बुखार खत्म हो जाता था। दादियां बहुत अनुभव सुनाती थी ना कि कैसे कैसे बाबा ने सचमुच में बाबा से कर्मयोगी बनने से बाबा के अंदर वो पावर आ गई कि हर चीज, हमने दादी को भी देखा है, बड़ी दादी को, दादी ऑपरेशन हॉस्पिटल में जब राउंड लेने आती दादी को बुलाते, दादी दादी यूं करती थी पेशेंट के ऊपर, पेशेंट ठीक होने लगता था, वो रूहानी पावर ना, तो रूहानी फखुर था बाबा के अंदर। तो ऐसे दादी को दादियां भी उसकी एग्जाम्पल बनी थी, तो वो अपने अंदर पैदा कर, ठीक है, तो बेफिक्र बादशाह। और सातवां कदम बाबा का था त्याग तपस्या सेवा। जब रूहानी फकुर आ गया तो बाबा का त्याग, मैंपन का त्याग बाबा ने, जो भी थोड़े सूक्ष्म त्याग थे बाबा ने सब त्याग कर दिया। और जैसे बाबा सब कुछ थोड़ा सूक्ष्म छोड़ते गए बाबा निराकारी बनते गए। लास्ट में जो बाबा की स्टेज है 66, 67, 68 में निराकारी स्थिति आती गई, त्याग से निराकारी स्थिति, चलते हुए देखो बाबा जैसे है ही नहीं ऐसा लगता था, और त्याग से तपस्या शुरू हो गई। बाबा को जब देखो 24 घंटे तपस्या, कर्मयोग की स्थिति वैसे थी कि तो तपस्या क्या होती है, बाबा के आसपास कितनी, मतलब बाबा के पास बच्चे क्या क्या कहने के लिए आते थे किंतु बाबा के पास आके सब भूल जाते थे ना। जो जगदीश भाई अनुभव सुनाते थे, निर्भय भाई सुनाते हैं, ब्रजमन भाई सुनाते हैं, बाबा के साथ की दादियां सुनाती, कैसे बाबा की क्या स्थिति, तपस्या, उस तपस्या से बाबा निर्विकारी बने। और फिर बाबा सेवा, त्याग तपस्या सेवा जो कहते ना, उससे बाबा निरंकारी बने, निर्विकारी से निरंकारी बनते गए। तो लास्ट में जो बाबा के 3 शब्द हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, वो बाबा ने परफेक्ट बन के दिखाया। जब बाबा ने कैलाश दे दी थी ना हमारी, जब गांधीनगर वाली, तो उसमें छोटी बच्ची थी, तो बाबा ने 68 में उसको भेजा ऊपर, जो ऊपर वाले बाबा को ऊपर देख के आओ, बाबा ऊपर वाला, तो बाबा ने कहा, उसने कहा कि ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकदार है बाबा, नीचे अब छोटी बच्ची थी ना, उसको पता था नहीं, तो आप तो बाबा इतने चमत्कार नहीं हो, तो बाबा ने दिन रात तपस्या शुरू कर, बिल्कुल एकांतवासी बन गए, एकाग्र रहने लगे। और फिर देखो बाबा ने गीत भी बंद हो गए मुरली में, देखो अब लास्ट की मुरली में गीत नहीं होते। और फिर बाबा ने उसके बाद क्या किया, बाबा फिर जो है एकदम निराकारी निर्विकारी निराकारी बनते गए। और जब शायद कौन सी जनवरी को मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सी जनवरी को बाबा ने कैलाश देवी को दोबारा भेजा कि जाओ देख बाबा ऊपर को देख के आओ। तो बाबा ने सुना के बताया, बाबा ऊपर ऊपर वाला बाबा भी इतना चमत्कार है जितना आप चमत्कार हो, दोनों समान है। तो बाबा ऐसे संपन्न और संपूर्ण बन गए। और बाबा ने बाबा वो आज्ञाकारी वफादार ईमानदार सम्मान रखा सपूत बच्चे बने, है ना। कहते सपूत बच्चे कहाँ रहते हैं, माँ बाप के दिल में रहते हैं। तो शिव ब्रह्मा बाबा एक नंबर वन सपूत बच्चे बने, पहला ऐसा बच्चा सपूत बच्चा बना जिसने अपनी बुद्धि को अपने मन को और अपने संस्कारों को संपूर्ण परिवर्तन कर लिया। और परिवर्तन करके नष्टो मोह स्मृति लब्धा आठवां कदम, पूरे सब चीजों से बाबा जब बाबा जिसने अफेक्ट हुए हैं शाम को सब दादियां सामने हैं और तालियां सामने हैं। उसके पहले भी क्लास में विदाई शब्द पहली बार बोला और निराकारी निर्विकारी निरंकारी शब्द पहले बोल के फिर बाबा ने विदाई शब्द लिया और बाबा आके अपने कमरे में आकर के और दादी के हाथ में हाथ और बाकी सभी खड़े थे बच्चे, तो उन सबके बीच में एक सेकंड में नष्ट मोह की स्मृति लब्धा। वो स्टेज बाबा ने जहां भी कोई मतलब किसी सेवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं किया और बाबा एकदम उड़ गए। और कहां उड़ गए, क्योंकि बाबा एक आज्ञाकारी वफादार के सपूत बच्चे थे, तो शिव बाबा के दिल तक बजा के बैठ गए। शिव बाबा के दिल तक माना बाबा का दिल तक, शिव बाबा के दिल तक क्या, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम का सागर पहले भी समाये रहते थे और फिर जाके उस सागर में समा गए। और क्योंकि ब्रह्मा के दिल में कौन था, क्या था ब्रह्मा के दिल में, सिर्फ शिव बाबा था, खाली बाबा का दिल में शिव बाबा था और कोई था ही नहीं। और शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गए तो बाप दादा बन गए, तो ये सूक्ष्म बदन बन गया। तो ऐसा तो सूक्ष्म शरीर क्या बना, सूक्ष्म शरीर पावन सत्व प्रधान बुद्धि, पावन सत्व प्रधान मन और संस्कार, तीनों को बाबा ने 100% पावन सत्व प्रधान बना दिया। तो शरीर एकदम सूक्ष्म बन गया, लाइट का बन गया, संस्कार दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, मन सारे शरीर में फैला है वो सूक्ष्म शरीर बन गया, और दिव्य संस्कार दैव्य गुण जो धारण बाबा ने किए वो चमकीली ड्रेस बन गई। तो ब्रह्मा बाबा अवेक्ट होकर के बाप दादा की गोद में जाके बैठ गए, शिव बाबा की गोद में जाके बैठ गए और शिव बाबा उनकी दिल में आके बैठ गए। तो ये स्थिति बाबा की बन गई, है ना। ऐसा हमको बनना है, ये जो है संपूर्ण और संपूर्ण बनने का तरीका यही है। अगर हमको सूक्ष्म वतनवासी बनना है तो हमको भी अपनी बुद्धि को बेहद अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृद्धि और समर्पणता, सहनशीलता, कर्मयोगी और उसके बाद बेफिक्र बादशाह और फिर त्याग तपस्या सेवा, निराकारी निर्विकारी निरंकारी और नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो अगर हम इन आठों कदम को अपने जीवन में ले आए और एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें तो हम भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण मन के यहां रहते भी हर कर्म करते भी सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप समान सूक्ष्म वतनवासी बन सकते हैं, राइट। तो पक्के हो गए पांच कदम, तो पक्के हो गए नहीं हो गए, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, दो मिनट हमारे पास हैं। आप बोलो, मैं नहीं बोलता हूं, अभी आप बोलो पहला कदम कौन सा है। पहला कदम अंतर्मुखता, दूसरा कदम बेहद की वैराग्य वृत्ति, तीसरा समर्पणता, तीसरा चौथा सहनशीलता, पांचवा कर्मयोगी, छठा बेफिक्र बादशाह, सातवां त्याग तपस्या सेवा, निराकारी निर्विकारी निरंकारी और आठवां नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ओम शांति।